ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दीर्घ योग यजो हृदयान् मुनाय उपासते तद् हरयोपि ययुस्मरण क्रिया उरुघेन्द्र भोग भुजा दंड विषक्त धियो स्वयं अपि ते समा समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। Simply by constantly thinking of him, the enemies of the Lord attain the same supreme truth, whom sages fixed in yoga worship by controlling their breath, mind, and senses. Similarly, we srutis, who generally see you as all-pervading, will achieve the same nectar from your lotus feet that your consorts are able to relish because of their loving attraction to your mighty serpentine arms, for you look upon us and your consorts in the same way. Samoham sarvabhuteshu namedveshyoshti nakriya ye bhajanti tamam bhaktya maiteshu chuchapyaham. This verse that we're reading from tonight, from the 87th chapter of the 10th canto, is a prayer offered by the personified Vedas to the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna.
जो प्रार्थनाएं अभी हम पढ़ रहे हैं ये श्लोक ये वेदों साक्षात वेदों द्वारा दी गई प्रार्थना है जो कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 27वें अध्याय से है।
The Vedas are here claiming and reconfirming what Krishna has said in Gita, that he is equal to everyone. He is not partial to anyone. According to how we approach him, he reciprocates with us accordingly.
वेद यह इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भगवान सबके प्रति समभावना रहते हैं और जिस भावना से हम उनके समीप आते हैं उसी भावना से वो हमारे प्रति व्यवहार करते हैं।
In this material world, everyone who is on the bodily conception of God, their love, their affection, their dealing with others is very conditional. It is subjected to one's own desires for sense gratification, with one's own natural exploitative motivations.
इस भौतिक जगत में जो रिश्ते होते हैं जो भावना होती है वो स्वयं के स्वार्थ भावना से मिश्रित होती है।
But Krishna is pavitra. He is completely pure. He has no such ulterior motives. He only has one purpose in all of his desires, to bring about the supreme welfare of all living beings.
लेकिन भगवान जो हैं वो इस तरह से स्वार्थी नहीं हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि सारे जीवात्माओं का कल्याण हो।
Even if a person curses God, denies God, defies everything that is sacred to God, Krishna will reciprocate with that person in such a way that's for the ultimate welfare out of love for that spirit soul.
अगर कोई व्यक्ति नास्तिक भावना भी रखता है या भगवान की निंदा करता है या अवहेलना करता है तो भी भगवान उसके प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे अंततः उसका कल्याण हो जाए।
ओम पूर्णम अदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव अवशिष्यते। That whatever Krishna does is perfect and complete.
भगवान जो भी करते हैं वो पूर्ण है।
What is most perfect is pure, unmotivated, uninterrupted love. There is nothing more perfect than that.
सबसे ज्यादा पूर्ण चीज है कि अहेतुकी अप्रतिहता प्रेम, इससे बढ़कर पूर्ण कुछ नहीं है।
When Isha Upanishad explains that the absolute truth is perfect and complete, this means in essence that whatever is emanating from the absolute truth is based on the principle of the purest, highest, most unmotivated, uninterrupted love.
जब ईशो उपनिषद में कहा जाता है कि भगवान पूर्ण है और उनसे आने वाले सब चीजें पूर्ण है, उसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आ रहा है वो शुद्ध प्रेम के द्वारा ही आ रहा है।
Even the wrath, the anger of God, is based on pure, unalloyed love forever who is angry with.
भगवान का जो क्रोध है वो भी प्रेम का ही एक रूप है।
Whatever Krishna does, Shri Bhagavan, is simply for the welfare of all living beings.
भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए ही है।
We read in an earlier chapter of the 10th canto of an instance of how Krishna makes no discrimination of who he shows his love to, although he makes great discrimination of how he shows his love.
So, इससे पहले वाले अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे श्री कृष्ण भगवान कोई भेदभाव नहीं रखते कि किसके प्रति प्रेम रखें, लेकिन ये जरूर भेद करते हैं कि वो प्रेम को किस तरह से प्रकट करते हैं।
This is explained when Maharaj Yudhisthira, he regained the kingdom of the world and he wanted to perform a Rajasuya sacrifice. The Rajasuya Yajna is the most difficult of all yajnas to perform.
Maharaj Yudhisthira Rajasuya Yajna karna chahte the aur ye sabse badi mushkil cheez hai karne ke liye.
Do you know what you have to do before you can even begin this yajna?
और उसको शुरू करने से पहले भी क्या करना पड़ता है?
You have to send messengers to every kingdom in the world, and every king of every part of this planet must accept that you are their leader, and that they will work submissively under your direction.
आपको अपने संदेशवाहक भेजने पड़ते हैं हर राज्य में, और उन्हें हर राज्य के राजा को मानना पड़ता है कि आप जो हैं उनसे श्रेष्ठ हैं और वो इनके आपके आज्ञा पालन को करेंगे।
Which means you cannot even begin the preparations for the Rajasuya Yajna until the whole world is under your command.
जब तक पूरी दुनिया आपकी आज्ञा में नहीं हो तब तक आप तैयारियां भी नहीं कर सकते इस यज्ञ की।
Who can perform this yajna today?
आज कौन ऐसा यज्ञ कर सकता है?
And that is only the beginning.
वो एक ही व्यक्ति है जो राजा है।
Then you have to have mountains upon mountains of gold.
और उसके अलावा जो है बहुत सारे ढेर पर्वत होने चाहिए सोने के।
Pure gold.
शुद्ध स्वर्ण।
And then you have to feed tens and thousands upon Brahmins on pure gold plates.
और 10,000 ब्राह्मणों को जो है सोने के पात्रों में खिलाना चाहिए।
And then you must have these Brahmins to chant particular mantras. Everyone has to be in perfect pronunciation.
और ब्राह्मणों द्वारा ऐसे मंत्र का उच्चारण होना चाहिए और उनका उच्चारण बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए।
These mantras go on for days upon days upon days, and if one of such hundreds upon Brahmins makes one mistake in one pronunciation of one syllable, the whole sacrifice is nullified.
और ये जो मंत्र है ये कई दिनों तक चलता रहता है, और इन सब ब्राह्मणों में से अगर कोई एक ब्राह्मण एक मंत्र के एक अक्षर को गलत उच्चारण करता है तो सारा यज्ञ बेकार हो सकता है।
And it's not like today where you make a mistake, you say, well, let's start over again. It's nullified for good.
और ऐसा नहीं कि हम फिर से शुरू करें, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है जीवन भर के लिए।
And then you have, but before beginning the yajna, you have to choose who is the most worshipable person on all of the earth, and you have to offer arti and puja to him and honor him with great prayers of glorification.
और यज्ञ के शुरुआत करने से पहले निश्चय करना होता है कि सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है और उसकी पूजा और उसका यशगान किया जाना चाहिए।
And there should not be any discrepancy.
और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
So, when it came to select who was going to be the one to receive this Agra Puja, Sahadev, the brother of Yudhisthira, nominated Lord Shri Krishna.
तो जब ये चयन करने का अवसर आया तो युधिष्ठिर के भाई सहदेव ने कहा कि ये श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए।
He is the supreme personality of Godhead He is the reservoir of all pleasure, of all beauty. He is the controller of everyone. He is worshipped even by Brahma and Shiva. So certainly, there is no one more worshipable than him.
वो स्वयं भगवान हैं, वो परमेश्वर हैं, ब्रह्मा और शिव जी उनकी आराधना करते हैं, इसलिए उनसे बढ़कर श्रेष्ठ पात्र कोई नहीं हो सकता।
So everyone accepted.
सबने स्वीकार किया।
And then Yudhishthir began to offer the worship of Lord Shri Krishna.
और युधिष्ठिर जो है भगवान की पूजा करने लगे।
Just as he was beginning, Shishupal. You have all heard of Shishupal, the king of the Chedi province. He became uncontrollably angry to see Krishna receiving the highest worship any person can possibly accept.
जैसे वो पूजा शुरू की तो शिशुपाल जो चेदी राज थे वो बहुत क्रोधित हुए ये देखकर कि कृष्ण की अग्र पूजा हो रही है।
And he stood up incensed with anger and began to blaspheme Krishna in so many terrible ways.
और वो बिल्कुल क्रोधित होकर भगवान के अनेक शब्दों में निंदा करने लगा।
It may be asked, why is it that Shishupal did not object when Krishna was first nominated?
अभी प्रश्न उठ सकता है कि जब श्री कृष्ण का नाम दिया गया उस समय क्यों नहीं शिशुपाल ने कहा?
He waited till after the ceremony had already begun.
उसने इंतजार किया जब पूजा शुरू होने तक।
That is because Shishupal was such an envious demon that he wanted to spoil the entire ceremony of Maharaj Yudhishthir.
क्योंकि शिशुपाल ऐसे ईर्ष्यालु राक्षसी प्रवृत्ति के थे कि वो पूरी जो यज्ञ को नष्ट करना चाहते थे।
You see, if he would have objected at the beginning, there would have been a discussion. But objecting after it was already decided creates havoc, which potentially could ruin the whole yagya.
अगर वो इस तरह से पहले से ही बताते तो फिर तो वो चर्चा हो सकती थी, लेकिन बीच में जब शुरुआत हुई उसके बाद बताने से सब कुछ नष्ट कर दिया।
He stood up and said, I cannot believe all of you great personalities in this assembly are such wretched fools. There are so many respectable people here, so many people qualified to be worshipped, and you chose Krishna? This okay. Nonsense. Nobody knows what is his caste. Some say he's a Kshatriya, some say he's a Vaishya. This little cowherd boy, simply in the pastures, playing with cows. You are choosing him amongst all of you great kings and Kshatriyas.
शिशुपाल इस तरह से कहने लगा कि आप सब बड़े मूर्ख हो कि इतने सब अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति होने के बावजूद आपने श्री कृष्ण का चयन किया, इसकी जाति के बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं और ये बिल्कुल ग्वाले ही हैं, इसको तुमने क्यों चयन किया?
He has killed his own relative, Kamsa, his loving, caring uncle. He smashed him and killed him, murdered him ruthlessly. He's a murderer and you're choosing him?
और ये आप श्री कृष्ण का चयन कर रहे हैं जिसने अपने मामा कंस का वध किया, ऐसे लोगों का ऐसा का क्यों चयन किया है आपने?
You have lost your common sense. It is like feeding a crow what is the most sacred offering to the deity of the Lord.
और ये तो ऐसे है कि जैसे कि यज्ञ की चीज है किसी कौवे को दी जाए।
This way he went on and on and on blaspheming Krishna. He could not control his anger.
इस तरह वो कृष्ण की निंदा करता रहा और अपने क्रोध को वश में न कर पाया।
At that time, practically all respectable persons, they just left the assembly.
उस समय सब आदरणीय व्यक्ति जो हैं वो सभा को छोड़कर चले गए।
Because they knew if anyone hears any insult to a great personality, all of his piety and all of his spiritual credits are destroyed.
क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे महान पुरुष की निंदा सुनता है तो उसके सारे सत्कर्म और अच्छी चीजें नष्ट हो जाती हैं।
The pious people ran from that place. To not hear this insult of a great person.
जो सत्पुरुष थे वो वहाँ से भाग गए क्योंकि निंदा नहीं सुनना चाहते थे।
The Pandavas they did not run.
पांडव वो दौड़े नहीं वहाँ से।
Bhima, Arjuna, Nakula, others, they just picked up their weapons to kill Shishupal.
भीम, अर्जुन, नकुल जो है अपने अस्त्र लेकर शिशुपाल का वध करने के लिए दौड़े।
They started approaching him with their weapons in hands.
अपने अस्त्र को लेकर उसके करीब आने लगे।
And Shishupal, in such anger, he was so intoxicated in illusion, he drew his sword and said, "Come, I'm ready to destroy all of you."
शिशुपाल इतना क्रोधित था कि अपनी तलवार लेकर कहने लगा कि मैं आप सबको नष्ट कर दूंगा।
Krishna told all of the Pandavas and the others, his well-wishers, he said, "You just be seated."
कृष्ण भगवान सबसे कहा कि आप बैठे रहिए अपने अपने स्थान पर।
Why? Because Krishna knew that if a fight broke loose, blood would be shed. And if one drop of blood falls on a sacrificial arena, the sacrifice is finished.
भगवान जानते थे कि अगर लड़ाई होगी तो खून गिरेगा और अगर एक बूंद खून गिर जाए तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा।
So Krishna told him, you sit down. And then with great anger in his own mind, he took his Sudarshan chakra upon his finger and actually, it went like this. He sliced his head off his body.
और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया।
But the Sudarshan chakra was so razor sharp that he, within a second, his head was finished, fell to the ground, and not one speck of blood fell.
और सुदर्शन चक्र इतना तेज था कि उसका सर कट गया, लेकिन बिल्कुल खून एक बूंद भी नहीं गिरा।
I know that many of you are doctors here tonight. I dare you to show me such a surgeon who can perform such an operation.
जैसे कोई डॉक्टर हो आप में से कोई बता सकते ऐसे कोई अस्त्र होगा जिससे कि बिना खून के सर कट सके
to surgically remove a person's head from his neck without one drop of blood coming out.
ये कैसे सर्जन से हो सकता है कि सर को धड़ से अलग किया जाए बिना किसी एक बूंद खून के गिरे?
Whatever Krishna does, he is best.
तो कृष्ण जो भी करते हैं उसमें श्रेष्ठ हैं।
भगवान श्री कृष्ण की
जय।
He is supreme surgeon.
वो सर्जन में सर्वश्रेष्ठ।
हाँ, but then the most wonderful thing took place before everyone's eyes.
और उसके बाद सबसे अद्भुत चीज हुई सबके आंखों के सामने।
The soul of Shishupal came out from his body. In the form of a brilliant, effulgent white light.
और शिशुपाल के शरीर से उसकी आत्मा एक सुंदर प्रकाश के रूप में बाहर निकली।
And in front of everyone in the assembly, that spirit soul floated through the air.
और सबके सामने वो जो है आकाश में हवा में तैरने लगी।
And it entered into the body of Sri Krishna.
और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गई।
Which means he attained liberation.
इसका अर्थ हुआ कि उसे मुक्ति प्राप्ति हुई।
सायुज्य मुक्ति, he merged into the body of the absolute truth, God.
इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं कि भगवान के शरीर में प्रवेश करना।
Great personalities have wondered, why is this? In fact, in the seventh canto of the Srimad Bhagavatam, Yudhisthira Maharaj is asking Narada Muni, how is it? There was no one so envious and demoniac as Shishupal in the entire earth, and he has attained the same destination as the great yogis who are favorably worshipping the Lord with pranayam, asana, yama, niyama, dhyana, samadhi. For birth after birth after birth, they're striving to purify their senses, and in the end, if they're most fortunate, they may attain Sayujya Mukti. Shishupal, what did he do? He was a sense enjoyer, he was sinful, he was blasphemous, and he was envious. Why did Krishna give him the same destination of the great Mahatmas?
भागवत के सातवें स्कंध में युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न नारद मुनि से पूछते हैं कि जो पद योगियों को अनेक जन्म जन्म तपस्या करने के बाद भी नहीं प्राप्त होता, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, वही सायुज्य मुक्ति शिशुपाल को, जो कि एक ईर्ष्यालु था, राक्षस था, उसको कैसे सरलता से मिल गया?
हाँ, नारद मुनि एक्सप्लेन्ड दैट कृष्ण इज इक्वल टू एवरीवन।
नारद मुनि ने समझाया कि श्री कृष्ण सबके प्रति समभावना रखते हैं।
Because Shishupal was thinking of Krishna 24 hours a day in hate, that thought of Krishna purified his heart.
क्योंकि निंदा भावना से शिशुपाल 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और इस विचार से वे शुद्ध हो गए।
In fact, Narada Muni said, I wish I could think of Krishna so intensely as Shishupal.
नारद मुनि कहते हैं काश मैं भी इस तरह से शिशुपाल की समान भगवान के चिंतन कर सकता।
He could not forget Krishna for a second.
शिशुपाल एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल नहीं सका।
You know how this world is? When you're envious of someone, you can't get that person out of your mind.
आप जानते हैं दुनिया कैसी है, अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्यालु हैं तो मन से विचार निकलता ही नहीं है।
When you're talking with your friends about any subject, somehow or other you bring that subject along to criticizing whoever you're envious of.
तो अगर आप किसी विषय में चर्चा कर रहे हैं तो किसी न किसी तरह से आप उस व्यक्ति की निंदा करना शुरू कर देते हैं.
Envy is burning in all of our hearts.
हम सबके हृदय में ईर्ष्या जो है अग्नि के समान जल रही है.
It's intolerable.
और ये असहनशील है.
So therefore, the moral of the story is, if you have to be envious of anyone, be envious of Krishna.
तो ये कहानी का शीर्षक ये है कि अगर आपको ईर्ष्यालु होना ही है तो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करें.
Because if you always think of Krishna in any way, the thought of Krishna will purify you.
क्योंकि अगर आप हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं किसी भी कारण से तो कृष्ण के विचार से आप शुद्ध हो जाएंगे.
I remember one time our devotees approached our Gurudev and told him that, you know, Guru Maharaj, sometimes when we chant the holy names in the street, people say, oh, these terrible, terrible, terrible Hare Krishnas are disturbing us.
कई बार लोग हमारे गुरु महाराज के पास गए कहने लगे कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि ये कैसे हरे कृष्ण है, कैसे भयंकर लोग हैं.
Prabhupada said, very good, very good.
Prabhupada जी ने कहा बहुत अच्छा.
Even the atheists are chanting Krishna's names.
जो नास्तिक हैं वो भी कृष्ण का नाम ले रहे
हैं. Thinking of Krishna.
वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं.
He said to us, very good work, you are doing well.
बोलते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं.
And on another, in the Chaitanya Bhagavat, there's a story. This is actually in the Chaitanya Charitamrita about one devotee. His name was Gadadhar Das.
Chaitanya Charitamrita में गदाधर दास की कथा आती है.
And he was in Bengal on behalf of Lord Chaitanya Mahaprabhu, leading wonderful, wonderful kirtans through the streets.
वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जो है कीर्तन करते थे.
He was getting thousands of people to follow behind him, and everyone with their arms raised were dancing through the city streets chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो उनकी प्रेरणा से हजारों लोग इस तरह भगवान का नाम कीर्तन करते थे.
In those days, there was a lot of communalism.
और उस समय भी ऐसे बहुत सारे जाति.
There was someone called the Kaji, who was actually not a Hindu at all. And he was the governor of the land.
वो उस समय सरकार का जो मालिक थे, वो काजी थे.
So he sent his armies out. He sent his armies out to destroy the kirtans if they kept. He first warned, if there's any more of this Hari kirtan, he didn't say Hari kirtan, any more of this chanting on the streets, I will imprison you all. I will break your instruments. I will plunder your families and your homes. Stop this at once.
अरे अगर उन्होंने ऐसे अपनी सेना को भेजा और उससे पहले चेतावनी दी, अगर फिर से आप लोगों ने ऐसा कीर्तन किया तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा.
So Gadadhar Das said, Krishna will protect us. Let us go.
गदाधर ने कहा कि कृष्ण भगवान हमारी रक्षा करेंगे.
And they had wonderful, wonderful kirtan through the streets.
तो इस तरह से बहुत सुंदर कीर्तन करने लगे.
And then Gadadhar Das went right to the Kaji's house.
और गदाधर वो काजी के घर पर गए.
And knocked on the door.
दरवाजे पे खटखटाया.
And said, this Hari kirtan is the Yuga Dharma. You should also join.
बोलते ये हरि कीर्तन जो युग धर्म है, आपको भी भाग लेना चाहिए.
He said, you should chant Hari Krishna.
आपको हरे कृष्णा गाना चाहिए.
And the Kaji just he said, it was at night. He wanted to go to sleep. He said, I will chant Hari Krishna tomorrow.
उन्होंने कहा कि मैं कल हरे कृष्णा गाऊंगा.
Then Gadadhar said, you already did.
मैंने कहा आपने ऑलरेडी कर लिया.
You already began. Too late.
आपने शुरुआत कर ली है.
And then the Kaji actually started feeling love of Krishna in his heart.
और उसको भी अपने हृदय में कृष्ण प्रेम का अनुभव होने लगा.
He was delivered.
और वो मुक्त हो गए.
This is the power of Krishna.
ये कृष्ण की शक्ति है.
Like the sun does not discriminate who the beneficial rays will come to.
जिस तरह से सूर्य जो है कोई भेदभाव नहीं करता अपनी किरणों को बांटने में.
In the same way, Krishna is so merciful that his love is so perfectly entering into everyone's heart without discrimination.
उसी तरह से श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं और उनका प्रेम जो है सबके हृदय में बिना भेदभाव के प्रवेश कर रहा है.
So this Shishupal, simply because he was remembering Krishna intensely, even in envy and hate, he achieved liberation.
और ये शिशुपाल हालांकि ईर्ष्या के कारण, निंदा के कारण भगवान का स्मरण कर रहा था, उसे मुक्ति प्राप्ति हुई.
And here the personified Vedas are praying that we are hoping that we can also attain such a destination.
और यहाँ पर साक्षात वेद जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी ये गंतव्य स्थान प्राप्त हो जाए.
Therefore, Krishna says in Gita, "Man mana bhavamad bhakto majajim nam namaskuru mam evaishashi sacham te prati jani priyoshime." There is no method of purification greater than always remembering Krishna.
इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा हमेशा स्मरण करने से बढ़कर और कोई शुद्धिकरण नहीं.
Even the people we see on the streets, some people we see are suffering so terribly.
हम सड़क पर देखते हैं कई लोग बहुत दुख भोग रहे हैं.
And sometimes it is very bewildering. Why is God doing this to these people?
हम बड़े मोहित हो जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों को दुख क्यों दे रहे हैं.
Superficially, externally, sometimes it just seems very cruel and unfair.
और दिखने में ऐसा लगता है कि ये बड़ी क्रूर व्यवहार है.
But actually, the reality is something altogether different.
वास्तव में सत्य तो बिल्कुल भिन्न है.
According to our actions, we must accept an equal corresponding reaction.
अपने कार्य के अनुसार हमें फल स्वीकार करना ही पड़ता है.
That is the law of karma.
ये कर्म का नियम है.
If you look at a person and he has a burn spot on his body, he may not remember, it may have happened as a child, but he can know that sometime before I was burned by fire.
जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति का चमड़ा जला हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि जरूर बचपन में इसका हाथ जला होगा.
Similarly, wherever there is suffering or misery, you can understand that this is the manifestation of the fact that we have indulged in certain sinful activities in the past.
इसी तरह से जब हम दुख देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जरूर ये पिछले किसी पाप कर्म का ही फल है.
We may or may not remember.
शायद हम इसको याद ना करें.
But the fact is, this law of karma, which is so stringent, has all been designed, orchestrated by Krishna.
ये कर्म सिद्धांत जो बहुत कठोर है वो श्री कृष्ण द्वारा ही बनाया गया है.
And Krishna, Om Purnamada Purnamidam, is perfect and complete. And as we explained, the highest of all perfections is unmotivated, uninterrupted love. There is only unmotivated, uninterrupted love emanating from the Absolute Truth at all times, in all forms.
परम तत्व से हमेशा अहेतु की अप्रतिहता प्रेम ही निकल रहा है हर समय.
We may not understand.
हम शायद समझ ना पाएं.
But even the most suffering, difficult conditions of this world are unmotivated in love being offered by God to that soul.
और हमें ये समझना चाहिए कि जो दुख भी आ रहा है वो भगवान के प्रेम का प्रतीक है उस जीवात्मा के प्रति.
It is not cruel at all.
वो बिल्कुल क्रूर नहीं है.
Physically, it may be cruel, but for the soul, it is like the love of a parent punishing the child for his own benefit.
भौतिक रूप से वो क्रूर हो सकता है लेकिन आत्मा के लिए वो ऐसे है कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे को दंड दे रहे हैं अच्छाई के लिए.
But try to explain to the child as he's being punished that this is because your parent loves you.
अगर आप किसी बच्चे को समझाने का प्रयास करिए कि ये माँ बाप आपको दंड दे रहे हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं.
Generally they cannot accept.
तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे.
But an adult can understand.
लेकिन कोई वयस्क व्यक्ति होगा वो जान सकता है.
When we grow up spiritually, we see there's nothing but God's love all pervading everything everywhere.
जब हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन में तो हम जानते हैं कि सब जगह पर सब समय भगवान का प्रेम ही फैला हुआ है.
And the perfection of life is not to be free from physical or mental suffering.
जीवन की सिद्धि ये नहीं है कि भौतिक या मानसिक त्रासों से मुक्त हो जाना.
Because the body and the mind are going to suffer today or tomorrow no matter what you do.
क्योंकि शरीर और आत्मा तो है आज नहीं तो कल दुख भोगते ही रहेंगे.
Janma mrityu jara vyadhi, birth, old age, disease and death, it's painful, it's terrible, physically.
भौतिक रूप से जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये तो दुखदाई है ही.
But the perfection of life is when we can perceive, appreciate God's love in every single aspect of this creation.
प्रेम की पूर्णता इसी में है कि जब हम देख सकें कि भगवान का प्रेम सब हर अंश में है.
When we're willing to be grateful for God's love in any way it comes, knowing that according to what I have done, this is Krishna's way of bringing me closer to Him ultimately.
जब हम जान लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो श्री कृष्ण का एक तरीका है मुझे अपने करीब लाने के लिए और उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं.
This is not blind faith.
ये अंधा विश्वास नहीं है.
This is not just a superimposition of some nice philosophy to cope with the problems of life.
ये कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो कि समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है.
This is the supreme truth.
यही परम सत्य है.
This is what has been revealed by all the great acharyas, by all the great incarnations, and by all the great scriptures.
ये सब आचार्यों और सब शास्त्रों द्वारा बतलाया गया है.
In the Bible, there is a story of Job.
Bible में जॉब की कथा आती है.
He was a very pious man with many children, and he was very wealthy, and he had many sheep and much land, and he was always praising God.
वो सत्कार्य व्यक्ति था. उसके कई जो है कई उसके बच्चे थे और बहुत ही वो अच्छे परिवार में था.
One time Satan came to Job, to God, and God said, "Do you see Job? He's such a nice devotee."
एक बार एक व्यक्ति भगवान से कहने लगा कि जॉब देखो कितना अच्छा व्यक्ति है.
Satan said, "Anyone could be a nice devotee when he has good health, nice family, nice land, a lot of opulence and wealth. Anyone could be good then. Let me take away everything he has and see what a good devotee is. He'll curse you for doing it."
तो वो व्यक्ति भगवान से कहने लगा कि अगर आप ये सब ऐश्वर्य उसे ले लेंगे तो वो आपकी निंदा करने लगेगा.
God said, "All right, you take everything away, but don't touch his body."
भगवान ने कहा आप सब कुछ छीन लीजिए लेकिन उसके शरीर को स्पर्श मत करें.
Satan, he went into Maya. We're talking about Maya now. Went in, and all of a sudden there was fires, and all of a sudden people came to Job and said, "You know what just happened? An epidemic took place in your sheep, and they're all dying." And then somebody else came from another direction and said, "Whatever sheep have of your flock have survived, people have stolen them all." And then somebody else came from another direction and said, "Do you know just what happened? Your ancestral home just caught on fire, and all your children and all your sons and their families, they all died, and your house is burnt down." And somebody else came and said, "While the fire is going on, plunderers came and stole everything you have. Now you don't even have any property. They've occupied your land."
तो इस तरह से माया के प्रभाव से जो है धीरे धीरे ऐसा होने लगा. उनको समाचार मिला कि उसके सारे पशु सारे उसके रिश्तेदार और सारा धन संपत्ति उनका छीन लिया गया.
And what did he started chanting God's names?
और वो भगवान का नाम कीर्तन करने लगा.
What kind of craziness? Wife said, "What are you doing, Chan? Why don't you curse God? Look what he's done to you." He said, "No, no, there's a good reason for this. God is great."
उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो भगवान ने क्या किया तुम्हारे लिए. तो वो कहने लगा नहीं भगवान ने कुछ अच्छे के लिए किया.
Satan went back. God says, "See, he's a good devotee."
तो जब माया वापस भगवान से बात करते हैं तो भगवान.
He said, "Anybody can accept whatever happens as long as his body is healthy. Let me do something to his body, then let us see how he curses you."
तो माया कहने लगे कि अभी इसके शरीर पर मैं आक्रमण करती हूँ देखता हूँ फिर क्या होता है.
He said, "You can do anything you want to his body, but do not kill him."
भगवान ने कहा आप कुछ भी करिए लेकिन उसका वध नहीं करिए.
So what did he do? He filled his body with boils. From head to toe, he had just big, gigantic, pus-filled boils.
तो उसके शरीर पर जो है पूरे फोड़े हो गए जिसमें कि पस भरी हुई थी.
Do you know how painful even one boil is on the body?
तो अगर एक भी हो ऐसा boil तो बहुत तकलीफ हो सकती है.
You have one little boil on any part of your body, your whole life is miserable.
आपका पूरा जीवन जो है दुखदायी हो सकता है.
He had thousands of boils.
उसके पास हजारों ऐसे फोड़े हो गए.
And he was just laying there, suffering in agony, crying in the laying in the dirt.
वो बड़े दुखी थे और लेटे हुए थे धूल में.
His face was so puffed up with pus, nobody could even recognize who he was.
शरीर में इतनी पस भरी थी कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये कौन है.
So one of his friends came. Some of his friends saw him laying there. "Is this Job, our friend?"
तो कोई.
He said, "We thought you're supposed to be a devotee of God."
तो कुछ लोग कहने लगे कि ये जॉब है हम तो सोच रहे थे आप भगवान के भक्त हैं.
What kind of God is this?
भगवान तुम्हारा कैसा है?
He said, "No, no, God is very good."
बोले नहीं भगवान जो भी कर रहे हो ठीक है.
Everything he does is filled with love.
वो प्रेम के कारण ही सब कुछ करते हैं.
I will tolerate anything for my Lord.
भगवान के लिए मैं कुछ भी सहन करता
हूँ. This is his gift.
ये उनकी भेंट है.
Then there was a discussion, and ultimately, God saw that he was becoming proud of being such a great devotee.
भगवान ने अंत में देखा कि उसको अभिमान हो रहा था कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं.
So, although he was praising the Lord in such a way, God comes down and just looks at him and says, "You're nonsense. You're not a devotee at all. You're puffed up."
तो भगवान कहने लगे कि आप जो है खाली अभिमान से फूले हुए हैं, इसलिए आप भक्त नहीं हैं।
Said yes, my lord.
बोला हाँ भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ।
Then God said to Satan, "Huh? You see, he's a nice devotee, isn't he?" Saying that he's very nice devotee.
तो अंत में माया ने भी स्वीकार कर लिया कि वो अच्छे भक्त।
Now I understand what a devotee is.
अभी मुझे समझ में आया कि भक्त क्या है।
Even I will bow down to such a devotee.
मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे भक्त।
And then they gave him his health back, and then all the robbers left, and all the sheep came back to life, and then his children came back to life, and he had 9 times the wealth he had before.
तो सब कुछ उसे मिल गया और 9 गुना ज़्यादा उसे संपत्ति मिल गई।
But he also had very high realizations.
फिर भी उसको ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त हुआ।
So in this way, a devotee sees beyond the external circumstances.
इस तरह से भक्त जो है ये बाहरी स्थिति से परे देखता है।
A devotee sees that Krishna's love is equal for everyone.
वो ये देखता है कि श्री कृष्ण का प्रेम सबके लिए बराबर है।
For the most terrible dacoit and for the most high saintly person, his love is equal to everyone.
चाहे कोई डाकू हो या संत हो, दोनों के लिए बराबर।
There's only one difference. The saintly person, because he's approaching with love, the Lord reciprocates with sweet leela.
फर्क यह है कि क्योंकि भक्त जो है वो प्रेम से आता है, इसलिए भगवान लीला से उसे व्यवहार करते हैं।
And because the dacoit is in such a chivalrous manner going against the laws of God, the Lord out of love reciprocates him by smashing him.
और जो राक्षसी प्रवृत्ति होता है उसको भगवान दंड देते हैं।
But ultimately he wants them all to come back home, back to Godhood.
अंततः उनका उद्देश्य यह है कि सभी वापस उनके धाम आ जाएं।
And Krishna is directly and or indirectly bringing everyone on the path on the road back home, back to Godhood.
तो भगवान हर एक को जो है धीरे-धीरे भगवत मार्ग पर ही लगा रहे हैं।
The path of bhakti is the direct express highway back home, back to Godhood.
जो भक्ति का मार्ग है वो एक हाईवे के समान है भगवत धाम जाने
के। Various forms of materialism, even in the name of religion, are indirect. Sometimes detours going in the other direction for the time being, but ultimately, all roads go back to Krishna.
और अंततः जो है सभी रास्ते भगवान की ओर जाते हैं, जो भौतिकवाद के भी हैं वो घूम फिर कर, लेकिन अंत में भगवान के पास।
So Shishupal, after he was destroyed by Krishna's grace, that wonderful, miraculous surgical operation performed by Bhagwan, then what happened is Yudhisthir Maharaj performed the Rajasuya Yajna, and it was very successful.
Shishupal ka ant karne ke baad Yudhisthir Maharaj ne yajna kiya aur wo bahut hi safal ho gaya.
And because he performed this yajna, all prosperity came upon the entire earth and all living beings became blissful.
Aur ye sab yajna karne ke karan pure dharti pe aishwarya chha gaya aur sab log anandit ho uthe.
Because you see, the performance of sacrifice is the greatest, most merciful and compassionate form of charity for all living beings.
सब जीवों के प्रति दान देने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि हम यज्ञ करें।
And this was the exclusive reason that Yudhisthira went through so much endeavor, spent so many years and so much wealth to perform this yajna.
और यही कारण था कि युधिष्ठिर ने इतना ज्यादा प्रयास, इतने ज्यादा कष्ट उठाए इस यज्ञ को करने के लिए।
Simply not because he wanted to show the ego that I have done, but out of compassion and love for even the least amongst the citizens of this world.
वो अपने स्वयं के मान के प्रतिष्ठा के लिए न करते हुए हर नागरिक की अच्छाई के लिए उन्होंने यज्ञ किया।
If Yudhisthir Maharaj saw any animal being mistreated, or even a tree or a plant unnecessarily mistreated, he would apprehend and punish that sinner.
अगर वो देखते कि किसी जानवर या पेड़ के प्रति गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो उस पापी को पकड़ते हैं।
And the result was practically no one dared to cause any harm to any creature on earth.
उसका फल यह हुआ कि कोई किसी के प्रति कोई हानि नहीं करता था।
So this Rajasuya sacrifice, we have already explained how technical and how difficult it is to perform. It was simply meant for the elevation and purification of all living beings.
तो ये यज्ञ जो हमने बताया जो बड़ा मुश्किल है करने के लिए, वो इसीलिए था कि सब जीवात्माओं का कल्याण हो।
But it is described in the Shastra that in this age of Kali Yuga, to sincerely come together in the association of devotees and chant the holy names of Krishna is equal to performance of thousands of Ashwamedha Yajnas, Gomedha Yajnas, and Rajasuriya Yajnas.
शास्त्र में बताया जाता है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ या गोमेध यज्ञ से बढ़कर है भगवान के भक्तों के संग में आकर हरि नाम कीर्तन करना।
In fact, it is the only type of sacrifice recommended in this age of Kali Yuga that can bring us back to Krishna, back to pure love.
वास्तव में यही एकमात्र यज्ञ है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण के करीब आ सकते हैं।
Other yajnas can create some karma kanda, some material piety in the atmosphere. But only the yajna of Nam Kirtan can actually bring us to the feet of God in this age of Kali Yuga.
अलग प्रकार के यज्ञ से तो हमें कुछ भौतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति सिर्फ संकीर्तन यज्ञ से हो सकती है।
And it is so easy.
ये बहुत सरल है।
We see these little children; they do not have much education, but they love to chant the holy names.
जैसे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं जानते हो, फिर भी नाम कीर्तन कर सकते हैं।
Therefore, they actually have the best education because they understand the value of Krishna's name. Raja Vidya Raja Guyam Bhavitramitam Uttamam.
और ये इनकी सबसे श्रेष्ठ विद्या है क्योंकि वो भगवान के नाम का महत्व जानते हैं.
Krishna says the king of education is the science of devotion.
कृष्ण भगवान बताते हैं कि राज्य विद्या है भक्ति का विज्ञान.
It is to be considered even these little children. They have a more valid and precious education if they simply understand the importance of chanting than big PhDs with all of their book knowledge, but they cannot accept the holy name.
अगर ये बच्चे भगवान के नाम का महत्व जानते हैं तो इनका शिक्षण बड़े बड़े जो PhDs है उनसे भी बढ़कर है जो भगवान के नाम का महत्व नहीं समझ पाते.
It is a fact. Krishna doesn't care about our position. He cares about our sincerity.
Krishna hamari siddhi ko nahi dekhte balki hamari imandari ko dekhte hain.
So in this way, this Hari Nam Yajna is the prime benediction for all humanity.
Ye jo Hari Nam Yajna hai wo sari manavta ke liye sabse bada aashirwad hai.
We don't have to collect mountains of gold. We don't have to subjugate every citizen of the whole world and have them bow before us and accept our leadership. We do not have to have hundreds and hundreds of Brahmins chanting perfect Vedic mantras. All we need to do is move our tongue.
हमें यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, दूसरे राज्यों को अपने अधीन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अपनी जबान हिलानी है.
And the effect is more auspicious to all living beings than all of these big yajnas.
और इसका प्रभाव जो है सारे यज्ञों से बढ़कर ज्यादा मंगलकारी है.
But we must move our tongue with sincere attention and devotion.
लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक और भक्ति से हमें अपनी जीवा चलानी चाहिए.
And chant the holy names.
भगवान का नाम कीर्तन.
That is why Lord Chaitanya said, "This Nam Kirtan is the prime benediction for all humanity."
इसीलिए श्री चैतन्य प्रभु ने बताया कि ये नाम कीर्तन है, यही मानवता के लिए एक आशीर्वाद है.
There is no greater wealth. There is no greater benediction. And the opportunity to be with the devotees to chant the holy names.
भक्तों के संग में भगवान का नाम कीर्तन से बढ़कर और कोई अच्छा अवसर या आशीर्वाद नहीं है.
There is factually nothing else required.
और किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं.
All rituals, all cultivation of knowledge is all meant ultimately to bring us to this point.
सारे कर्मकांड या ज्ञान का उद्देश्य यही है कि हमें इस स्तर पर ले आना.
Of with great conviction to be willing to raise our arms and call out the holy names. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram,
Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Ram.